الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے سے گیپس پلیز فل کر لے, اگر جو ساتھی بھی نہیں آئے تو پیچھے والے آگے آ جائے, یہ دو تین چیئرز ہیں, پھر بیچ میں آئیں گے نا تو مسئلہ ہوگا. شروع کرتے ہیں اگلی آیت کو, کوئکلی آ جائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب اگلی آیت پہ چلیں گے جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ چاروں طرف اتنا بگاڑ ہے, ہماری کوششوں سے کیا ہوگا, کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگ دین کی روح کو سمجھ سکیں. کیا آپ کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے؟ میرے دل میں تو دن بدن یہ بڑھتی جا رہی ہے کہ کس طرح سے پوری دنیا میں مسلمانوں کا جو زوال ہے اس کو ہم عزت اور ترقی میں بدلیں. تو اس کا طریقہ کار ہے, اہم آیت ہے, اس لیے باپ صاحب کی بہت زیادہ توجہ چاہیے. بچوں کو سب کو بیٹھنے دیجئے اور آپ ارد گرد سے بے نیاز ہو, اس وقت توجہ بٹے گی تو آپ کا اپنا نقصان ہوگا. آیت 122, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً, اور اہل ایمان کے لیے یہ تو ممکن ہی نہیں کہ وہ سارے کے سارے ہی نکل جائیں. غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والوں کے اوپر اتنی پکڑ ہوئی کہ اس کے بعد یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ اس کے بعد جب جنگ کا حکم ہوگا تو سارے ہی نکل پڑیں گے. اب جب سارے نکل پڑیں گے تو کچھ باقی کام ہے جو دوسروں نے کرنے تھے, ان کا کیا ہوگا؟ تو طریقہ بتا دیا کہ میدان جنگ میں جب بھی جانے کا حکم ہو تو اس کے لیے وقت اور حالات کے تقاضوں کا خیال رکھا جائے گا. ابھی عام دنوں میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فلولا نفرم من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین, تو ایسا کیوں نہ ہوا कि निकलता इनकी हर जमात में से एक गिरोह, ताकि वो दीन का फहम हासिल करते। ये पहला स्टेप है, कॉमा लगा लीजिए। फिर उसके बाद क्या करते जब खुद सीख जाते, वली युनजिरु कौमहुम इजा रजाउ इलैहिम। और वो अपने लोगों को खबरदार करते जब इनकी तरफ वापस लौट जाते, ताकि वो भी नाफरमानी से बचते रहें। इस आयत को अच्छी तरह से समझने के लिए जरूरी है कि हम इसी सबक, इसी सूरत के अंदर पीछे आयत नंबर 97 थी कि अल आराब अशद्दु, आराब ज्यादा शदीद हैं कुफर और निफाक में, और उनके बारे में इस चीज के ज्यादा चांसेस हैं कि वो अल्लाह की हदों को कायम नहीं रखेंगे। याद आ गई आपको आयत? वहां हमने देखा था कि मदीना में रहने वाले लोगों को तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने का मौका ज्यादा मिला, लोगों ने अल्लाह के नबी के साथ से फायदा उठाया। लेकिन इसके बरक्स जो गिर्द गिर्द के देहात थे, जहां बद्दू और गरीब और कमजोर लोग रहते थे, उन तक इल्म की बात नहीं पहुंचती थी। इस वजह से उनमें मर्ज था निफाक का। वहां भी ये बात हुई थी, या उसको दोहरा लीजिए, कि इल्म की कमी निफाक का जरिया बनती है। इंसान को अपने फायदे और नुकसान का पता नहीं चलता। यहां अल्लाह सुबहान तआला ने एक तरीकेकार बता दिया कि क्या देहातों और बस्तियों को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? ऐसा नहीं किया जाएगा, बल्कि क्या किया जाएगा? इसको थोड़ा सा हम तरतीब से समझते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। आप देखिए कि हमने पीछे भी पढ़ा सूरत अल नाम, सूरत अल आराफ में भी, और आगे भी बहुत जगह पढ़ेंगे कि नबी जो है वो बड़े शहरों में भेजे जाते थे, बड़ी बड़ी बस्तियों में, बड़े बड़े शहरों में, क्योंकि वहां के लोग अगर ठीक हो जाएं, सीधे रास्ते पे आ जाएं, तो बाकी लोग चूंकि उनको फॉलो कर रहे होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। अब जब बड़े शहरों में नबी आएंगे तो जाहिर है कि उनके साथ जो लोग काम करेंगे, जो उनसे फैज हासिल करेंगे, वो भी वहीं के लोग होंगे। तो दीन ऊपर की सतह पे तो फैलेगा। इसको आज के दौर में आप यूं समझिए कि हम जब अपने इर्द गिर्द अपने माहौल पे नजर डालते हैं, तो मिसाल है कि कराची शहर ले लीजिए, लाहौर ले लीजिए, इस्लामाबाद ले लीजिए, सिर्फ मारूफ शहर है इसलिए नाम ले रही हूं। इन शहरों में दुनियावी पढ़े लिखे लोगों की कसरत है, दौलतमंद भी इधर ज्यादा होंगे, इंटेलेक्चुअल भी होंगे। अमूमन दीन को जब लोग प्रेजेंट करते हैं तो इन्हीं जगहों पे दीन का काम भी ज्यादा होता है, क्योंकि पैसा इनके पास होता है, दीन की जगह बन जाती है। इसी तरह से उधर लोगों का इंटेलेक्ट इतना ज्यादा होता है कि थोड़े से वक्त में भी कोई बात समझे तो सीख लेते हैं। अब हुआ क्या कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, ये तीन शहर तो बन गए आइडियल सिटीज। यहाँ के लोगों को नमाज, रोजा, हज, जकात, दीन की बुनियादी चीजें, अल्लाह की हदें सब पता चल गई। अब बाकी शहरों का क्या होगा? मिसाल है कि कोई मुजाफात के इलाके सोचिए, छोटे छोटे गांव समझ लें, कोई नाम ले लीजिए, दो चार गांव के छोटे शहरों का जो पाकिस्तान में हो, वो भी एक शहर ही है। कोई उसके इर्द गिर्द मिसाल है कि आप देखिए सबब्स जो होते हैं, जैसे मिसाल है कि अगर राहवाली है या कोई सी जी, अब ये जो छोटे शहर है जिसको आज के दौर में आप पाकिस्तान के देहात कहेंगे, वहां दीन कैसे पहुंचे? सवाल ये पैदा होता है। आप सोचिए कि नबी सल्लम के दौर के जो बद्दू थे ना, वो देहाती थे। अब आप और मैं, मिसाल है कि आप यहां से पढ़ के निकले, आपने यहां पढ़ाना शुरू कर दिया, कराची में जो पढ़ते हैं वो कराची में पढ़ाएंगे, लाहौर वाले राहुल लाहौर में पढ़ाएंगे, तो ये साइड के जो सबर्ब्स, जो छोटे इलाके, इन तक दीन कैसे जाएगा? और एक बात जिन में रखिएगा कि जब तक इल्म का पानी सोसाइटी की ग्रॉस रूट को नहीं जाएगा ना, चेंज नहीं आएगी। यदि हम बाहर देखते चंद बड़े चेहरे हैं जो मुआशरे में फसाद पैदा करते हैं, मिसाल है कुछ आर्ट के नाम पे, कुछ सियासत के नाम पे, कुछ मजहब के नाम पे, हम कहते हैं इन चंद लोगों को ठीक कर लो बाकी सब ठीक होंगे। हालांकि अगर आप रियलिटी से फैक्ट्स देखिए तो पाकिस्तान के देहातों में ज्यादा आबादी है, कसरत भी ज्यादा, दूसरी बात नमाज भी नहीं पढ़ते, हराम हलाल का नहीं पता। तो आप शहरों के चंद 10-20% लोगों को दीन सिखा के भी चेंज नहीं पैदा कर सकते, जब तक इर्द गिर्द रहने वाले देहातों में जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं उनको दीन की बेसिक समझ ना दें। मसलन आप इसको यूं समझ सकते हैं जैसे एक पौधा है, आप इमेजिनेशन में लाएं, कोई पौधे के पत्तों पे पानी छिड़कना शुरू कर दे तो क्या उस पौधे पे बहार आएगी? नहीं आएगी ना, कहाँ डालना पड़ेगा, जड़ों में। तो जो मसेज होते हैं ना, कसरत है लोगों की, वो रूट्स हैं। हम पाकिस्तान में इस्लाम लाना चाहते हैं, क्या करें, पाकिस्तान की गली गली कच्ची बस्ती। आप आज इस आयत को पढ़ते हुए बिल्कुल कच्ची बस्ती या गांव या देहात को जहन में ले आए। अब हो क्या, नबी या दीन का काम करने वाले तो बड़े शहरों में रहते हैं, अब सारे देहातियों को बुला ले शहरों में, वो आ नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। उस दौर में अगर सारे बद्दू जमा होकर मदीना में आ भी जाते तो उस जगह मस्जिद में इतनी जगह नहीं थी। तो उसका यहाँ एक बड़ा खूबसूरत तरीका बताया गया कि कुछ लोग हर बस्ती से निकले, मिसाल है वाकेंड से कुछ निकले, कोई टंडू मीर से निकले, कोई वजीराबाद से आए, को कुछ वो आके बैठे, अल्लाह के नबी से इल्म सीखें, फिर उसमें खूब अपने अंदर पुख्तगी पैदा करें, खुद सीखें, फिर सिखाना सीखें। गलती बहुत बड़ी आज के दौर में जो बहुत सारे लोगों से हो रही है कि वो सीखने के फौरन पर सिखाना शुरू कर देते हैं। खुद सीखना और बात है, सीखने के बाद सिखाने के बीच में ट्रेनिंग होती है। सीखें, ट्रेनिंग लें, फिर जो जिस बस्ती से आया था वहां वापस जाए, फिर अपने मस्जिद, अपने गांव, अपने सबब, अपनी किसी छोटी सी छावनी में, वहां अपनी हैसियत के मुताबिक दीन का मैसेज देने लगे। ये एक सिंपल सा सर्कल आपको समझ आ गया। आप देखिए कि किसी भी जगह पे जो दीन का काम करने वाले आलिम होते हैं ना, वो दिल की तरह होते हैं। दिल का जिस्म को काम क्या है, खून देना, ऑक्सीजन मिलती है, ब्लड साफ होता है और फिर सारे जिस्म में खून जाता है। अब अगर आप मेरी इस मिसाल को जहन में रखते हुए सोचिए कि आलिम या स्कॉलर्स या टीचर्स जो है ना, वो एक सोसाइटी के अंदर सदर है, दिल है। हर बंदे की अप्रोच नहीं है कि उलमाए कराम तक पहुंच सके, और सारे उन तक पहुंचेंगे भी कैसे, और वो सबको अकोमोडेट कैसे करेंगे। तरीकेकार क्या है कि उन उलमा से कुछ लोग दीन सीखें, फिर ये नहीं कि थोड़ा दिन इधर थोड़ा इधर चलते फिरते पिछले 10 साल से बस सीख ही रहे हैं, पता चला कुछ भी नहीं, पहला सारा 10 दफा कर लिया। ये तरीकाकार नहीं है। तरीकाकार ये है कि बहुत मुख्तलिफ लोगों को सिखाने से थोड़े से लोगों को ज्यादा अरसा सिखाए। मिसाल अगर अपने ऊपर लेके मैं मिसाल दे दूं कि अगर मैं कहूं कि हफ्ते में 7 दिन है, तो मैं 7 डिफरेंट जगहों को चूज कर लेती हूँ। हर सैटरडे आपको पढ़ा लूं, हर संडे मैं समझे बर्मिंघम चली जाऊं, हर मंडे मैं समझे के कहीं भी चली जाऊं, जो भी नाम है शहरों के। अब होगा क्या कि मैंने तो हफ्ते में 7 दिन दीन का काम किया, ठीक है ना, मुझे 7 गुना ज्यादा लोग मिले, मेरा अजर भी ज्यादा हुआ, मुझे हर दिन ट्रेवल भी करने का मौका मिला, ठीक है, मेरी शोहरत भी हो गई, जिसको मैं कुछ नहीं समझती, लेकिन फी जमाना लोग है किसको भी नाम समझते हैं। फिर इसके बाद देखिए कि 7 डिफरेंट जगहों पे जब मैं गई, इधर गई उधर गई, तो मैं कह सकती हूं मेरी 7 क्लास है, ठीक है। अब इसके साथ एक फितना शुरू हो गया, नफ्स मोटा होता है, नतीजा क्या निकलेगा, हर क्लास जो है वो ऐसी है जैसे एक औरत के 7 बच्चे पैदा हो गए। बहुत बहुत फर्क पड़ा तो कोई समझे कि क्लास आज शुरू हुई है किसी जगह, तो किसी जगह 15 दिन बाद कर दूंगी, तो दूसरी जगह 1 महीने बाद। ये सारी क्लासों के बच्चे बड़े कब होंगे, ये कुरान का पूरा करेंगे, ये दीन की अंडरस्टैंडिंग कब लेंगे, जब मेरे दुनिया से जाने का वक्त आ चुका होगा। एक दिन की क्लास जब कुरान सीखते हैं ना हम लोग, जो आम क्लासों में सिखाते हैं, एक रफ एस्टिमेशन है हमारे पास जो लेसन प्लान बनते हैं, वंस अ वीक जो क्लास होती है ना, अगर हम पूरे डिसिप्लिन से चलें, ये नहीं कि पढ़ाने वाला पाकिस्तान गया तो छुट्टी हो गई, और छुट्टियां हो गई तो वो नहीं, वो हज पे गया तो कहते जी मेरी क्लास भी हज पे चली गई, पढ़ाने वाले, ये नहीं मैं कह रही, पूरे लेसन प्लान के साथ जब हम वंस अ वीक क्लास लेते हैं ना, तो 7 से 8 साल लगते हैं कुरान पूरा होने में, वल्लाही। और 10 साल को आप एक रिलैक्सिंग रख लें, जो भी 10 साल में क्या कुछ नहीं हो जाएगा। फिर दूसरा नुकसान क्या होता है कि 10 साल में कई लोग आए कई गए, कई पैदा हुए, आपका अपना इंटेलेक्ट ही बदल चुका होता है, 10 साल की बच्ची और 20 साल की बच्ची के सोच में बहुत फर्क है। नुकसान क्या हुआ कि मैंने कोई फल नहीं पैदा किया, इसकी बजाय मुझे क्या करना चाहिए, ये अब कुरान बता रहा है कि मैं एक जगह बैठ गई, मैं कहती हूं कि आप बजाय इसके कि मुझे हफ्ते में 7 दिन कहीं बुलाएं, इस पूरे शहर, बल्कि जिधर 7 शहरों में मैंने जाना था, कुछ बर्मिंघम से, कुछ मैनचेस्टर से, कुछ लोग जो हैं बर्लिन से, इधर उधर से 10 10 5 5 लोग आ जाए, मैं इधर बैठी हूं, आपका एक ग्रुप इधर का उधर का, और आप मेरे साथ हफ्ते में 7ों दिन पढ़े। वही कुरान जब का 7 8 साल में पूरा होना था, वो 1 साल में पूरा होगा। फिर मैं आप सबको खूब पॉलिश करने की कोशिश करूं। तस क्या हो आपकी तरबियत, तो फिर आपको ट्रेनिंग सेशंस दिए जाए, सिखाया जाए, फिर आपको पूरे रेफरेंसेस दे के जो भी मुमकिन है, फिर आपको बर्मिंघम भेज दिया जाए, आपको मैनचेस्टर भेज दिया जाए, हर बंदा वापस चला जाए अपनी जगह पे, फिर वहां इन सारी कोशिशों को मल्टीप्लाई किया जाए, जिसको हम कह सकते हैं फ्रेंचाइजेशन। मैकडोनल्ड सारी दुनिया में एक जैसे, आप थोड़े बहुत फर्क के अलावा आपको पहले ही पता होता है वहां क्या होगा, कैंटकी चिकन एक जैसी होती है ना। दीन का काम इस तरह से फ्रेंचाइज करके डिसिप्लिन के साथ, सेम रूल्स, सेम रेगुलेशन, सेम सोर्स ऑफ नॉलेज, जब लोगों को इस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है, तो वो चेंजेस, चेंज जो 7 साल में भी मेरे अकेले से नहीं आनी थी, वो आप सबके मिलने से, अल्लाह के हुक्म से, विद इन 1.5 से 2 साल में आनी शुरू हो जाती है, चेंज आ जाती है। क्योंकि एक जहन सोचता है तो एक सोच है, और जब 60 70 80 90 100 लोग सोचते हैं तो फर्क होता है ना। तो अल्लाह के नबी का तरीकेकार ये था, आपने लोग तैयार किए, आपकी अपनी जिंदगी में लोग तैयार हो गए। मेरी नजर में किसी उस्ताद की कामयाबी ये नहीं है कि उसको कितने लोग जानते हैं, वो कितना बिजी है, कितनी मीटिंग्स हैं, कितने सफर करता है, ये तो हवा हवरोला है। आज आंखें बंद होंगी, 2 4 दिन लोग रोएंगे, खत्म। असल कामयाबी यह है कि व्हाट एम आई लीविंग बिहाइंड, ये आयत काम करने का एजेंडा दे रही है। कैसे देती है? अल्लाह सुबहान तआला कहते हैं, अब दोबारा इस सोच के साथ जरा सुने, पहले तो आपने तर्जमा से कच्चा पक्का सुना था ना। अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं कि देखो, फलौला नफरा, फिर क्यों ना निकले, मिन कुल्ली फिरकतिन, सॉरी, वमा कानल मोमिन, ये बात तो समझ आ गई ना कि सारे मोमिन नहीं निकलेंगे। लियन फिरू में नफरा किसके लिए निकलना था, आपको याद है? जंग के लिए, यानी सारे जंगों में नहीं जाएंगे। देखिए, जिहाद की दो किस्में है ना, एक जिहाद बिल कलम है और एक जिहाद बिल तलवार अब सैफ है। सारों की जरूरत ही नहीं पड़ती हर वक्त, दोनों को अगर आप टैली करना चाहें ना, तो आप देख सकते हैं कि एक वो है जो जंगों में जाके लड़ते हैं लोग, और एक वो है जो इल्मी जिहाद है। दोनों में क्या फर्क है? पहली बात अगर आप देखें तो जो जंग की बात है वो हर वक्त तो नहीं होती, जबकि इल्मी जिहाद की जरूरत हर जगह। फिर जंग में लड़ने के लिए कुछ खास प्रोटोकॉल चाहिए, मसलन आप देखिए कि औरतें जंगों में नहीं जाती, छोटे बच्चों की वहां जरूरत नहीं होती, जबकि इसके बरक्स इल्म के लिए ना तो उम्र की बात है, ना औरत की बात है, ना मर्द की बात है। तलबुल इल्मी फरीदत लिकुल्ली मुस्लिम, हदीस के अल्फाज है कमोबेश के इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पे फर्ज है। जब हम दीन की समझ को, दीन को लेने देने के लिए आम लोगों के लेवल पे आके कोशिशें करेंगे, तो ज्यादा लोगों की कोशिश जरूरत पड़ेगी। तो मैदाने जंग के लिए तो चंद सिपाही बहुत होते हैं, 8 10 दिन जंग लगती है फिर खत्म, लेकिन इल्म का काम हर वक्त का काम है, हर दिन का काम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का में लोगों को तकरीबन 1/3 कुरान दे दिया था। मक्की कुरान ज्यादा है मदनी कुरान से, मक्की सूरतें ज्यादा है मदनी सूरतों से। तज़किया हुआ, 13 साल उनकी खूब रगड़ाई हुई, एक पे एक आयत आ रही होती थी कि जो बंदे के अंदर के पोल खोल देती थी। अब जब 13 साल उनकी तैयारी हो गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ग्रुप तैयार हो गया लोगों का, चोटे खाए हुए, मारे खाए हुए, घर माल लुटाए हुए, फिर देखते हैं कि तुम अल्लाह के दीन के लिए क्या छोड़ सकते हो। रास्ते की सोबतें तैयार हुई, ये सारे मरहलों के बगैर भी अल्लाह के नबी की अल्लाह मदद कर सकता था। वो फरिश्ते जो उहद के मैदान में आए, सॉरी, वो फरिश्ते जो बदर के मैदान में उतरे, क्या वो हिजरत के मैदान में नहीं उतर सकते थे? बुर्राक आता, जो उस हिजरत से तकरीबन 1.5 साल पहले अल्लाह के नबी को सिदरतुल मुंतहा तक ले गया, सोचिएगा, हिजरत से 1 साल 1.25 साल पहले वाकया मेराज हुआ था। वो बुराक जो आपको उस वक्त सुबहान अल्लाह यसरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, फिर उधर से ऊपर ले गया, सूरत नजम में हम पढ़ेंगे, पहले सूरह बनी इसराइल में पढ़ा, क्या वो बुराक मक्का से मदीना नहीं ले जा सकता था? एक छड़ापी मारते मक्का से मदीना आते, लेकिन नहीं, अल्लाह ने नबी के जरिए करके दिखाया, किसी जगह दीन का निफास मरहलों से होता है। ये पिछली आयत, कदम भी सहने पड़ते हैं, प्यास भी आती है, भूख भी लगती है, तकलीफें भी सहनी पड़ती हैं, क्योंकि अल्लाह लोगों को तैयार कर रहा होता है कि क्या ये बोझ बर्दाश्त कर लेंगे। उसके बाद मदीना में आने के बाद मस्जिद नबवी की बुनियाद क्यों डाली, कभी आपने सोचा? पीछे पड़ी है हमने भी ये बात, क्योंकि टीम तैयार थी, अब एक मरकज चाहिए था, और मरकज भी ऐसा इंडिपेंडेंट कि जिसके ऊपर किसी का कोई बोझ ना हो, ताकि लोग पैगाम को ना बदलवा दे। मस्जिद नबी बन गई। अब वो कैसी बनी? ये आज वाली मस्जिद नबी थोड़ी थी, छप्पर था, वो भी बन गई। अब तीसरी चीज चाहिए थी, लोग भी तैयार हैं, जगह भी तैयार है, अब करना क्या, मेथोडोलॉजी क्या है, सिलेबस क्या है? उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीसा के मदीना के सूरत पे जो एक पूरा प्लेज लिया था वहां रहने वाले लोगों को और सहाबे कराम को, बैठकर जो बैते उकबा में ही अल्लाह के नबी ने एक मनसख दे दिया था, वो सब जमा करें तो पता क्या चलता है कि दीन का काम सिस्टम के साथ फैलता है। आज दीन बहुत है, तरतीब नहीं है। लोग पढ़ने से पहले पढ़ाने लग जाते हैं, नीम हकीम खतरे जान, ट्रेनिंग लेने से पहले इदारे खोल के बैठ जाते हैं, ऐसी स्टक होते हैं जगह में जाके कि जिसको कहते हैं ना जाए मानत ना पाए मानत, इदारा बना लिए, जामिया बना के बैठ गए। ऐसी मैं मिसालें दूं ना तो कितना वक्त लग जाए कि आखिर जब 2, 4, 6 साल की कोशिशों में वो लोगों ने चंदे दिए होते हैं, जगह तो बन जाती है, स्टाफ कोई नहीं, लोग कोई नहीं। लिटरली मैं मुबालगे से बचते हुए आपको कह सकती हूँ कि अल्लाह की तौफीक और उसकी रहमत से इस वक्त हम कुछ ऐसी जगहों पे मदद कर रहे हैं, अल्लाह की मदद से हो रहा है, हमें तो हमारी उसमें कोई औकात नहीं, कि जिनके पास जगह भी हैं, उनके पास इसबाब भी हैं, लोगों को भी पता है, लेकिन काम करना नहीं। लोग भी हैं, सबसे बड़ी बात है लोग भी होते हैं, काम नहीं कराना आता। और हर वक्त यही रोना धोना कि लोग नहीं आते, आते हैं तो चले जाते हैं, स्टाफ में नहीं है, आज तजवी टीचर बीमार हो गई है तो आज कुरान टीचर बीमार है, तो कभी छुट्टियां कभी कुछ। और मैंने कहा आप दिखाए पढ़ाते क्या, क्या मेथोडोलॉजी आपके स्कूल की, कहती वो क्या होती है, वल्लाही। अच्छा जी आपका क्या सिलेबस है, आप 2010 का जो आपका सिलेबस है क्या, कहते कोई पता नहीं ये क्या होता है भाई, आप क्या करेंगे, ये जो कुरान की क्लास पढ़ के निकलेंगे क्या करेंगे, कहती बस ये चल जाएंगे दूसरी क्लास आ जाएगी। तो मैंने कहा इनका क्या होगा, कहती बस आती नहीं, लड़कियां पहले थक जाती हैं, 1 साल पढ़ के फिर आती नहीं। अल्लाह के बंदो आप फसल तैयार करके उसको पीछे छोड़ के कांटे वगैरह अगली फसल लगा रहे हैं, आपको क्या मिलना है। मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि दुनिया का कोई काम डिसिप्लिन के बगैर नहीं होता। आपकी बिरयानी नहीं पकती जब तक आप सारी चीजें पहले ऑर्गेनाइज ना करके रखें, पिछला काम बाद में, बाद का पहले करें तो होता। प्याजों में पानी डाल दें फिर बाद में उसको जरा ब्राउन करने की कोशिश करें, सारी रात भी पकाते रहेंगे वो कभी ब्राउन नहीं होंगे। आज मुसलमानों में ये बहुत ही ज्यादा खराबी आ गई कि हमने दीन का काम, बस दीन का काम रखा, इससे वो फसल नहीं तैयार हो रही जो अल्लाह के नबी के जरिए थी। तो अल्लाह कहते हैं अगर चाहते हो वाकई दीन को प्रमोट करना चाहते हो, खराबी दूसरी ये भी पैदा हुई ना कि हम अपने नामों में उलझ चुके होते हैं, कई दफा शख्सियात में उलझ चुके होते हैं, भाई मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक आपको पढ़ाती रहूंगी, ये तो कोई कमाल नहीं मैंने किया। कई लोग ऐसे हैं पिछले 20-20 साल से पढ़ा रहे हैं, हर शहर में ऐसी खूबसूरत शख्सियत मौजूद है, उन शहर के नाम के साथ लोग कहते हैं हाँ यार वो फलानी बाजी आपदा जी हैं, वो पिछले 20 साल से दर्स दे रही हैं, भाई बाजी आपदा जी ने क्या किया, उनका क्या हुआ, कहती बस वो क्लास लेती हैं, कोई जामिया बना नहीं। नहीं वो एक स्टूडेंट आई थी फिर उन्होंने बनाया, फिर उनके मुकाबले पे एक जामिया बन गई। ये फितने आपने तो वो सुने ही नहीं है जो हमने सुने हुए, कि एक मदरसे से अगर बच्चियां पढ़ के भी लिखती हैं तो उसी मदरसे की कोई टैलेंटेड बच्ची फिर बाद में अपना एक जामिया बना लेती है और वो फिर इख्तलाफ शुरू हो जाते हैं, हमारे जामिया की बच्ची को आपकी जामिया ले गई, आपका बच्चा इधर आ गया, हमारे लोग उधर चले गए, हमारी रौनक खत्म हो गई। ये कोई दीन नहीं है, करते तो हम दीन की खिदमत है लेकिन अल्लाह हमारे ऊपर रहम कर दे। जब उस्ताद अपनी जिंदगी में अपने शागिर्दों को अपनी जगहों पर बिठा लेते हैं ना और उनको गलतियां करने का मौका देते हैं, करो गलती हमारे सामने हम पीछे खड़े हैं तुम्हारे, और जिसने कहना मरते दम तक मेरी इस कुर्सी पे कोई नहीं बैठेगा, ये मसले आज हमारे दीन के, कुर्सियों पे सिर्फ उस्ताद बैठते हैं, हालांकि इसके लिए उस्तादों को सबसे पीछे बैठना पड़ता है ताकि पूरी क्लास को देखे कि कौन कहाँ क्या गलती करता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं फलौला नफरा मिन कुल्ली फिरकतिन, हर फिरके में से, फिरका और ताइफा यहाँ दो लफ्ज है, फिरका कहते हैं बड़े गिरोह को फरेका से, और ताइफा कहते हैं छोटे गिरोह को, जमात कह लीजिए, हर बड़े गिरोह में से कुछ छोटे गिरोह वाले लोग निकले, ली या तफक कहू फिर दीन, ताकि दीन की फिक हासिल करें। अब यहां लफ्ज फिक को भी आज समझ लीजिए, ये भी हमारे यहां बड़ा ही बेचारा मुश्किल लफ्ज है, जहां लफ्ज फिक आता है ना हमारे जहन में इख्तलाफ आ जाते हैं, फिक ही इख्तलाफ, इमाम अबू हनीफा की फिक, इमाम शाफी की फिक, हाथ कहां बांधो किधर बांधो, हालांकि फिक का लफ्ज क्या है, समझबूझ, ली या तफक्का हो फिर दीन कहा गया, ये नहीं कहा गया ली यतअल्लमू फिद्दीन। देखिए इल्म और फिक में फर्क होता है। इल्म के वाइड स्प्रेडेड है नॉलेज, फिक कहते हैं बेसिक्स की जिंदगी समझ आ जाए। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे दूंगी कि एक शख्स 10 साल मदरसे में पढ़ता है, वो इल्म की बारीकियां समझ जाता है, ग्रामर, सर्फ, नहव, असूले हदीस, असूले कुरान, अकीदा समझ आता, इसको आप कहेंगे इल्म, ठीक है। लेकिन खुदा खौफी नहीं आई, तकवा नहीं आया, जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं आया, डे टू डे लाइफ के ऊपर गौर नहीं कर पाता, तो आप कह सकते हैं कि इसके पास इल्म तो है, समझबूझ नहीं है। फिक्र से मुराद क्या है? हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक दीन सीखे। मसलन नमाज, रोजा, हज, जकात हम सबको आना चाहिए। आप माँ हैं, आपको इस्लामी हिसाब से बच्चों की तरबियत आनी चाहिए, पेरेंटिंग आनी चाहिए। आपके शौहर बिजनेस करते हैं ना, तो फिक वहां क्या है? उनको बिजनेस के डूज एंड डोंट्स पता हो। अगर आप अपनी बच्ची की शादी करने निकली हैं, तो आपको इस्लामी शादी के डूज एंड डोंट्स पता हो। अगर आपके घर बच्चा पैदा हुआ है, उसका अकीका कर रहे हैं, तो उसकी फिक पता हो। अल्लाह ताला कहते हैं हर बंदा आलिम नहीं बनेगा, ये बात जहन में रखिएगा। इल्म जैसे अब मिसाल है कि आप इस वक्त सीख रहे हैं भाई कि आपको लफ्जी तर्जमा सिखाया जा रहा है, आपको ग्रामर आगे सिखाई जानी है, आपको छोटी छोटी बातें सिखाई जा रही है। आप सबको हम कहते हैं कि आप 2 महीने पाकिस्तान में जा रहे हैं छुट्टियों में, आप ऐसा कीजिए कच्ची बस्ती में जाएं और उनको कुछ सिखा के आए, क्या करेंगी? अच्छा ऐसा करती हूँ कि मैं पहला पारा ले जाती हूँ लफ्जी तर्जमे वाला, और साथ उनके लिए मिफ्ताहुल कुरान ले जाती हूँ, ग्रामर की बुक, और साथ उनके पास जाती हूँ और उनको उसूल हदीस सिखाती हूँ। आप जाके उनको जाके कहेंगे ना, वो सरफ और नहव और वो दिस एंड दैट, वो कहेंगे भाजी ये क्या, ये कोई फसल का नाम है, ये कोई नया बीज है? जिन गरीबों को लिखना नहीं आता, जिनको पढ़ना नहीं आता, आपको क्या करना चाहिए? एक ऐसा प्लान बना के जाना चाहिए कि चले 2 महीने में, नंबर एक, मैं इनका अकीदा ठीक कर लूं। किस तरह से? जो बेसिक बेसिक बातें हैं, और वर्बल याद रखिए, देहाती लोग, कम पढ़े लिखे लोग कापियों पेंसिलों से नहीं सीखते, वो वर्बल ज्यादा बातें सीखते हैं, वो दुआएं सुन के याद कर लेते हैं। जिस दिन आप उन्हें कहेंगे लिखे, मैं इसका लफ्जी तर्जमा लिखाऊं, वो भाग जाएंगे, उनको नहीं लिखना आता। तो लेवल लोगों का पहचान है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके साथ कॉपी पेन काम करते हैं, लेकिन आम लोगों को बैठ के नमाज सिखा दें, कलमा सिखा दें, दुआएं सिखा दें, उनको हराम हलाल, तहारत, गुसल, वजू। अगर आप 2 महीने में एक गांव में रहने वाली बच्ची को घर गृहस्थी से लेकर छोटी छोटी चीजों तक उसकी बेसिक सिखा के, अल्हम्दुलिल्लाह लियतफक्कहू फिद्दीन में ये काफी है। अल्लाह उसको कभी मौका देगा, इससे ज्यादा सीखेगी, किसी मदरसे में जाएगी, फिर दीन इस्लाम की बारीकियां आएंगी, नो प्रॉब्लम। असल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सहाबा को बिठा के 10 साल का कोर्स नहीं कराया। लोग दूसरे ग्रुप से आते थे, यमन से आए, इसी तरह अबू हुरैरा आए, दूसरे रहते थे कुछ दिन, दीन की समझ बूझ लेते थे, चले जाते थे। एक शख्स नबी सल्लम के पास आया, कहने लगा अल्लाह के नबी सल्लम मुझे दीन सिखाए। आपने उसको नमाज, रोजा, हज, जो बेसिक चीजें ना, वो सिखा दी। कहने लगा अल्लाह के नबी, जो आपने कहा है ये कभी छोड़ूंगा नहीं, और इसके अलावा कुछ करूंगा नहीं, समझ रहे, यानी सिर्फ फराइज पे जीऊंगा। जब वो वापस जा रहा था तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो ये कह के गया अगर इसने किया तो ये जन्नती है। आप लोगों की रियायत करें, चले उन सबको भी छोड़ दे, अभी हमारे आपके हालात नहीं है गांव में जाने के, आप अपने मर्दों की बात करें। जी मैं कोर्स कर रही हूँ, लफ्जी तर्जमा पढ़ती हूँ, और मैं, आप भी मेरे साथ कोर्स करें, खोले तर्जमे का पारा आप भी। मैं 3.5 घंटे 4 की क्लास लेती हूँ, आप ऑफिस से आते हैं घर बैठे, आप मेरे साथ भी आप इतना ही वक्त लगाएं। कुछ 5-10% तो ये कर लेंगे, सबके शौहर ये नहीं करेंगे। मर्द इतनी बारीकियों में जा ही नहीं सकते जितनी बारीकियों में आप जाते हैं। उनको आप क्या सिखाएं? उनको आप दीन की लियतफक्कहू फिद्दीन स्पिरिट, मुझे जो इस दफा समझ आया ना लियतफक्कहू फिद्दीन, ये स्पिरिट ऑफ द रिलीजन है। वो झूठ ना बोलें, वो शराब ना पिएं, उनकी गलत नजरें ना हो, खुदा खौफी हो, तकवा हो, वो इस तरह से जिंदगी गुजारें कि जिसमें कोई हराम ना आ जाए। किसी के पास वक्त है, बिस्मिल्ला, आप उनके साथ बैठे, आप भी तर्जमा पढ़ें, वो भी पढ़ें लिखें। कुछ लोग पूरा तर्जमा भी पढ़ जाते हैं, यतअल्लमू ना फिद्दीन, लेकिन लिया तफक्कहू फिद्दीन फिर नहीं हो पाते। जब जिंदगी में कोई अमली इम्तहान आता है उस दिन फिर कहते हैं नहीं मजबूर है, आप शादी तो ऐसे होनी है, आप घर तो ऐसे बनाना है, बच्चे को तो ऐसे लेना है। कितने लोग हैं इल्मी बोझ बहुत लदा हुआ है, दीन की फिक्र नहीं है। जो चीज मुझे थोड़े से अरसे में समझ आई है वो यही आई है कि लिया तफक्कहू फिद्दीन क्या है, कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, और 5 हकूक कुरान के, मेरी नजर में लिए तफक्कु फिर दीन, कुरान के 5 हक है कि अल्लज़ीन यतलूनहू हक्क तिलावती, आयत सूरत 100 सूरह बकरा की आयत 120 या 121 है, कि जो लोग कुरान को उस तरह पढ़ते हैं जैसे उसका हक है, इस पर ईमान, इसको ठीक पढ़ना आ जाए, इसके ऊपर अमल, गौर व फिक्र, इसकी समझ आए, फिर अमल, फिर दूसरों को बताना। ये आम लोगों के दर्जे का काम है। तो दीन को इतने आसान तरीके पे लोगों को बताना चाहिए कि उनको अपनी जिंदगी का रास्ता समझ आ जाए। और नबी सल्लम की शादियां जितनी हुई थी ना, उसमें एक बहुत बड़ा राज क्या था कि मुख्तलिफ औरतों के जरिए मुख्तलिफ खानदानों में इस्लाम गया था। उम्मे सलमा आपकी बीवी थी, अगर आप इनके इल्मी सहीफों को जमा करें तो एक पूरी किताब बन जाती है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला से बहुत कम उम्र में आपकी शादी हुई। क्यों? अल्लाह चाहते थे एक औरत, चाहे उसको लोग बच्ची कहें, नबी की सोहबत में पले बड़े, और आपके बाद 48 ईयर्स तक हजरत आयशा सिद्दीका ने सहाबा को इल्म दिया। हजरत आयशा के स्टूडेंट जाहिर मर्द थे ना, औरतें तो नहीं थी ना, हजरत आयशा के स्टूडेंट्स की तादाद सबसे ज्यादा है। और आप कहते हैं कि आपका तर्ज तखातुब, खुतबा, दर्स, लेक्चर, कुछ भी कहें, अबू बकर और उमर और बड़े बड़े सहाबा से ज्यादा आपके बात करने के अंदाज में वजन था। अल्लाह दे देता है। औरतों में वैसे भी चूंकि डेलिकेसी होती है, मर्द तो सीधी बात मारते हैं ना, उनको 2 घंटे की बात कहें ना तो 15 मिनट में करके आ जाते हैं। कल आपके सर ने भी यही किया, अल्हम्दुलिल्लाह। कल मर्दों का एक हलका शुरू हुआ, तो खैर पूछते क्या करें, ऐसे मशवरा करते हैं हम लोग। तो मैंने कहा आप उनको 5 राइट्स ऑफ कुरान के बता दें, पहला दिन है। तो मैं तो उनको थोड़ा सा बता रही थी, और मेरा ख्याल था कि एक राइट बता के कोई 5-6 मिनट उस पर बात करेंगे, फिर दूसरा बताएंगे, तो 5-5 करके 25 मिनट का दर्स तो यही तैयार है। इन्होंने 5 मिनट में सारे बता दिए। बहरहाल तो बहुत अच्छा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो सिर्फ एक जोक है, मैं आपको बता रही हूँ कि मर्द बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। मैंने इन्हें कहा कि हम लोग क्लासेस के शुरू में सूरह फातिहा और इस तरह की चीज लगाते हैं ताकि माहौल बन जाए। तो वो 7 कारीज वाली तिलावत है, मैंने वो चला दी। मैंने देखा 6 मिनट की थी, मैंने कहा चले शुरू में माहौल बनता जाएगा, इन्होंने एक ही कारी की लगा के बंद कर दी। मर्द इतनी हैंकी पैंकी नहीं कर सकते जो हम औरतें होती है ना, रोए बैठे बातें करें डिस्कशन, मर्द बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। तो आप अपने मर्दों को समझें क्या कमी है, बैठ के बात करें कि ठीक है मैं 18 मंथ का कोर्स कर रही हूं ना, आप मेरे साथ बैठे और छोटी छोटी बातों पे हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है आप उनकी टीचर ना बने अभी, लेकिन कम से कम डिस्कशंस के नाते से उनके साथ बात करें, आप देखेंगी कि आपकी बात बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। इसी तरह आपके बच्चे हैं, आजकल माशाल्लाह वो पढ़ रहे हैं, बच्चियां हैं, स्कूल गोइंग है, सब कुछ है। देखिए ये तो जुर्म है कि हम उनको नेकी की कोई बात ही ना कहें और सिर्फ उनकी दुनियावी तालीम की फिक्र करें, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं। जिस तरह दुनिया हम उनको सिखा रहे हैं, दीन भी हमने सिखाना है। वो किसी बात पे भी आपको कह देते हैं नहीं पढ़ना है, तो आप उनसे बैठ के एक दिन बात कर लें, ये बताओ इस चीज की जरूरत है कि नहीं है। ये कभी नहीं होगा कि एक नई जिंदगी उनको फिर मिलेगी जिसमें आप उनको दीन सिखाएंगी। हाँ इस लेवल पे ठीक है, आपके बच्चियां मिसाल है आपके इस कोर्स में नहीं आ पाई, 18 मंथ का कोर्स कर सकी, तो बैठ के उनके साथ निगोसिएशन करें कि ये बताओ कि तुम्हारी नमाज, रोजा, ये सब चीजें, और सिर्फ इल्म नहीं, स्पिरिट, रूह, जिससे दिल में मोहब्बत आती है, आप इस तरह की छोटी छोटी चीजों पे कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें कि उनको दीन भी सीखना है। देखिए फुल टाइम नहीं सीख सकते अभी, लिया तफक्का हो फिर दीन। अगर आपका ये रोग बनता जा रहा है कि मेरे मरने के बाद कल क्या होगा, तो उनको भी तो फिक्र होनी चाहिए हमारा क्या होगा। इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 छोटी छोटी कोशिशें अल्लाह ने करवा दी कि एक हमारा सैटरडे को हल्का शुरू हुआ मदर डॉटर्स का, सदर फीसा के घर में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग थे, बच्चियां भी थी, और कहा कि और बच्चियों को भी नेक्स्ट वीक लेके आए कि माँ बेटी एक जगह बैठती हैं तो कम अज कम साथ वक्त तो अच्छा गुजरता है। फिर ये ब्रदर्स का हल्का संडेस को शुरू हुआ, नेक्स्ट वीक 3 to 5 होगा इंशाल्लाह। इसी तरह एक और जो सेशन शुरू हो रहा है हमारे पास बुध के बुध, उसके अभी मुझे डिटेल ज्यादा नहीं पता, लेकिन उसमें हम यंग बच्चियों के लिए वंस अ वीक कुरान शुरू करने का इरादा है। उसकी अभी डिटेल मेरे पास नहीं, लेकिन मुझे पता है कि कुछ ऐसा होने लगा है। ये छोटी छोटी चीजों पर तो हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं ना। तो सारी बात का खुलासा क्या है कि जिंदगी गुजारना आ जाए। हजरत उमर किसी को दुकान नहीं खोलने देते थे जब तक उसको नबी सल्लम की हदीसों में से तिजारत की बातें नहीं पढ़ा लेते थे, और लाल्लहुम यहज़रून से ये पता चलता है कि फिर वो बच भी जाएंगे। आप ये मत सोचे कि ये खानापुरी के लिए होगा, बल्कि फर्ज है कि होगा, और इंशाल्लाह इससे आप देखेंगे कि ये चीजें फिर घरों का माहौल बदलेंगी। हर बंदा अपनी सेंस के साथ, इसी तरह आप अपने बच्चों को ट्रेन करें क्या आपके बच्चे कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वहां दूसरे मुस्लिम बच्चे मिलते हैं, बिगड़े में आपके बच्चे उनके दाई बनेंगे। ये बिल्कुल ऐसे फैलेगा जैसे मैंने शुरू में एक मिसाल आपको दी ना कि दिल है। आप सोचिए कि दिल से पंप होती है ब्लड। अब दिल के करीब जो पाइप्स होती है ना, वो मोटी होती है, इतनी मोटी पाइप होती है, ठीक है। अब वो दिल से आपके इधर उधर जा रही है, खून तो सारे जिस्म को पहुंचाना है। अगर मैं कहती हूँ कि ये मेरी छिंगली उंगली जो है इसमें भी खून पहुंचाना है, तो वो दिल की पाइप तो इसमें पूरी कोई नहीं आनी। इसके लिए अल्लाह सुब्हान तआला ने बॉडी के अंदर आर्टरीज का निजाम फैलाया हुआ है, किपलरीज है, अगर आपने सुना होगा, मोटी होती है फिर पतली और बिल्कुल आखिर में एक जाल फैल जाता है। ये इल्म का तरीका है। बड़े उलमा से, दीनदारों से फोकस्ड होके फुल टाइम कुछ लोग सीखे और उसको फिर इर्द गिर्द फैला दे। यानी अब हम सब के घरों में कोई ना कोई छोटी छोटी कोशिश शुरू हो जानी चाहिए। हर बंदा आपके स्कूल में आके नहीं पढ़ेगा, फुल टाइम नहीं पढ़ेगा। आपको तो ये 4 दिन भी कम लगते हैं ना, उनको नहीं कम लगते, उनको ज्यादा लगेंगे अभी। इसके लिए आपने इंशाल्लाह कोशिश करनी है, और जितनी ज्यादा आपके अंदर पुख्तगी आएगी, अल्लाह ताला आपके लिए उतना आसान कर देंगे। ये तो हो गया इस आयत का खुलासा। अब हम चलेंगे अगली आयतों पे, और इस पे कल थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। आप सोच के आइएगा कि प्रैक्टिकली इसके क्या सिचुएशंस हैं। अब आखिरी आयतें सूरत की 123 से 129, मैं सिर्फ इसका खुलासा करूंगी। कल हम आखिरी हिस्से पे थोड़ी सी बात करेंगे। सूरत गज़वे तबूक पे किस तबसरा खत्म, यानी ये जो आखिरी आयतें थी, समझें जब भी हमने पढ़ी हैं, ये गज़वे तबूक के ऊपर अब आखिरी कमेंट्स थे। अब आप देखिएगा कि नबी सल्लम को अपने साथियों से कितनी मोहब्बत थी, इसका तरीका क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ्फार, जंग करो इन काफिरों से जो तुमसे करीब हैं, और वल यजिदु फीकुम गिलज़ा, वो तुम्हारे अंदर सख्ती पाए। इसमें इशारा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत अब बैनुल इक्वामी दावत बन रही है। आपने पीछे पढ़ लिया कि इस्लाम की सरहदें फैलती जा रही थी, इस्लामी हुकूमत अब तबूक तक पहुंच रही है। शुरू में मीठा मीठा प्यार प्यार कह दिया, बहुत कुफ्फ अयदियकुम हो गया, 13 साल खूब मारे खा ली। अब क्या होगा, जो तुमसे लड़ता है तुम भी लड़ो, यलू नकुम तुम्हारे करीबी लोगों तक बात करो। यहां से पहली बात तो ये पता चलती है कि करीब वालों से दावत का आगाज करना चाहिए। इसी तरह किताल या जंग की नौबत भी आएगी ना, तो करीब के दुश्मनों से पहले निबटना है। भाई जिस दुश्मन से आपकी सरहदें मिल रही हैं उसको आप कुछ ना कहें, दूर के दुश्मन से आप टक्कर जाके ले लेते हैं तो करीब वाला आपको आके खा जाएगा ना। यानी यहां मुसलमानों की खारजा पॉलिसी भी बताई गई है कि जिन मुल्कों की सरहदें गैर मुस्लिम मुल्कों से मिलती हैं, उनके साथ आप अपनी फौजें तैयार करें, आप वहां मार्च पास करें, वहां से सब कुछ होना चाहिए ताकि लोग इन सारी चीजों को ले, करीब के लोगों से पता चले, सोच समझ के काम करें। हर जिहाद जिहाद नहीं होता, दूर वाले दुश्मन को छेड़ लेंगे ना तो पास वाला आके आपको उससे पहले खा जाएगा। तो ये एक इंसान की बात है, और इसी से इशारा है कि अगर हम इसको अमर बिल मारूफ वाला जिहाद कहें तो हमेशा अपने करीब की फिक्र करें। आप समझ गई हैं, अब आपके बच्चे, आपके शोहर, आपके ससुराल, फिर होते होते आपके दूर के हमसाए, और इस तरह करते कराते दूसरी तरफ जाए। पीछे हम पढ़ चुके हैं आयत नंबर 39 में सूरत अनफाल में, वकातिलूहुम हत्तला तकून फितनतुम वयकून अद्दीन कुल्लुहु लिल्लाह, कि तुम उनसे लड़ाई करो यहां तक कि फितना ना हो और दीन सारे का सारा इस अल्लाह का हो जाए। तो कुफर और शिर्क के खात्मे के लिए भी लड़ाई होगी, और अगर कोई आपको छेड़ता है, मुसलमानों के ऊपर कोई हमले करता है, तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। खौफ आता है, हाय हम मुसलमान काफरों से लड़े, तो कहा वालम अल्लाह माल मुत्तकीन, जान लो कि अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे अंदर तकवा होगा तो दुश्मन हिरकल से भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। मदद तकवा के साथ आती है, फौज के साथ नहीं आती। फिर आगे फरमाया, मोमिन और मुनाफिक की कुरान सुनते वक्त कैफियत, आयत 124, वह इजा मा उन्जिला सूरत तुम फमिन हुम मन यकूलु अय्युकुम ज़ादत हु हाज़िही ईमाना, और जब कोई सूरत नाजिल होती है तो इनमें से बाज मुनाफिकीन आपस में कहते हैं कि इसने तुम में से किसके ईमान में इजाफा किया। फिर फम अल्लज़ीना आमनू फज़ादत हुम ईमानं वहुम यस्तबशिरून, तो जो लोग वाकई ईमान वाले हैं वो इनके ईमान में तो यकीनन इजाफा करती है और वो खुशियां मनाते हैं। इसके बरक्स आयत 125, वम अल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरदुन, रहे वो लोग जिनके दिलों में रोग है, फजादत हम रिच सनिला रिच सिहिम, तो वो इनके अंदर की गंदगी पर मजीद गंदगी का इजाफा करती है। वह मातू वहम कुफ काफरीन, और वो इस हाल में मर जाते हैं कि वो कुफर पे होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि जब भी कुरान पाक नाजिल होता तो आप उस कुरान के हिस्से को खुद याद करते, आपको याद हो जाता था ये अल्लाह सुब्हान तआला की एक मदद थी आप पर। उसके बाद आप उस कुरान को अपने इर्द गिर्द वाले लोगों से शेयर करते थे। ठीक है, अब जब कुरान आप दूसरों को सिखाते पढ़ते तो उसका नतीजा क्या निकलता कि वो लोग जिनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत थी वो इस पे खुशियां मनाते, वो बड़े गौर से सुनते, गर्क होते, जबकि मुनाफिकीन का रंग ढंग कुछ और था। वो जाते तो आपके पास सिर्फ इसलिए थे कि हाजिरी का हुक्म था, ना शामिल होंगे तो मुनाफिकत का राज खुल जाएगा, मगर उनको उन हदीसों से उन आयतों से कोई दिलचस्पी नहीं होती थी जो अल्लाह के नबी की जुबान से आती। नहायत बददिली से उकताए हुए बैठते और अपने आप को बस हाजरीन में शुमार करते, फिक्र ये लगी रहती थी कि जल्दी से यहां से भाग जाएं। अल्लाह सुब्हान तआला ने इनकी यहां तस्वीर कशी की कि इन बेवकूफों को ये नहीं पता कि हमारी अपनी फलाह है इसमें, हमारी अपनी खैर है, कितनी बड़ी नेमत है जो इस कुरान और इस पैगंबर के जरिए से इनको मिल रही है, और अपनी छोटी सी दुनिया और उसकी घटिया किस्म की दिलचस्पियों में ये इतने हरक हुए हैं कि ये खूबसूरत गाइडलाइन छोड़ के दुनिया के कामों में पहुंचते। और ये कुरान था जिसने अरब के रेगिस्तानों से लोगों को उठाया और पूरी दुनिया के इमाम बन गए। तो पता क्या चला कि कुरान आपके मेरे साथ वही मामला करेगा जो मैं और आप कुरान के साथ करेंगे। हम इससे प्यार करते हैं, ये हमसे प्यार करता है, हम इसको मोहब्बत देते हैं, ये हमसे मोहब्बत करता है, और सोन। इनके इस निफाक की अल्लाह सुब्हान तआला ने एक तस्वीर खींची आयत 125 में कि इनको क्यों नहीं समझ आता कि ये अल्लाह का नबी इनके लिए रहमत बन के आया है, क्योंकि वम अल्लज़ी नफी ने आयत 126 अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्ली आमिन मरतन औ मर मरतन औ मरतैन, क्या ये मुनाफिकीन देखते नहीं हैं कि हर साल इनको आजमाया जाता है एक बार या दो बार। ये कैसी आजमाइशें होती थी? लड़ाइयां और वबाएं, कभी किताल कभी आजमाइश। मुनाफिकों का इम्तिहान होती है ना हर जंग, नेकी के मौके मुनाफिक की आजमाइश है। अल्लाह कहते हैं कैसे लोगों को हर साल एक दो बार दफा बुलाया ही जाता है इन कामों पे, लेकिन इनको समझ नहीं आती। थुम ला यतूबून वला हुम यज़्ज़करून, फिर ना तो ये तौबा करते हैं और ना ही नसीहत लेते हैं। मतलब यह है कि मुनाफिक से अगर नेकी का एक मौका छिन जाता है ना, अगला भी छोड़ देता है, एक नेकी छूटी दूसरी भी छोड़ देता है, और हर नेकी के छूटने पे अगली दफा नियत करता है कि आइंदा नहीं छोड़ूंगा, फिर उससे छूटता है। हालत क्या होती है इनको, वही चीज अब आगे बढ़ रही है 127। वह इजामा उन्जिलत सूरत नजर अबादुहमिलाबाद, और जब कोई सूरत नाजिल होती है तो ये लोग आपस में एक दूसरे को देखते हैं, यानी किताल का कोई हुक्म आता है, कोई मुश्किल नेकी सामने आ जाती है तो मुनाफिकीन का नखियों से एक दूसरे को इशारे करते थे और क्या कहते थे एक दूसरे को दिल ही दिल में, हल जराकुम मिन अहदिन, क्या तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं। जब ये नहीं होता सुमन सरफू, फिर वहां से खिसक जाते थे। देखिए जिस जगह दिल नहीं होता ना, फिर ज्यादा अरसा वहां जिस्म भी नहीं रहता। मुनाफिकों के दिल नबी की महफिल में नहीं होते थे, मुश्किल आयतों पे मुश्किल हुक्मों पे कनखियों से एक दूसरे को इशारा करते थे चलो, और निकल जाते थे और निकल कर खुश होते थे, हालांकि सरफ अल्लाह कुलूबहुम, दरअसल अल्लाह ने इनके दिलों को फेर दिया है। अल्लाह कितने बदनसीब है, नबी की महफिल से सूखे निकले। क्यों? बिअन्नहुम कौम ला यफ़क्कहून, जैसे लोग हैं जो समझ नहीं रखते। यही है वो बात जो लिया तफक्कहून थी, जब दीन की रूह पैदा नहीं होती ना बंदे के अंदर तो दीन के लिए वक्त देना मुश्किल लगता है, फिर उस महफिल से निकलने को खुशी समझते हैं। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में ना करे। और इसके बाद अब आखिरी दुआएं, ना सिर्फ ये कि सूरत की आखिरी बल्कि कुरान पाक की अजीम तरीन आयत है, मैं सिर्फ तर्जमा पढ़ूंगी, कल मैं इस पे थोड़ी सी बात करूंगी। लकद जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनितुम, ए लोगो देखो आ चुका है तुम्हारे पास तुम ही में से एक रसूल, बहुत भारी गुजरती है आप पर तुम्हारी तकलीफ, ये नबी तुम्हें मुश्किलों में देखकर खुश थोड़ी होते हैं। तुम्हें कटते फिरते, धूप में जाते, प्यास सहते, पैदल चलते देखकर कोई खुशियां थोड़ी मनाते हैं। तकलीफ होती है, लेकिन इन तकलीफों के बावजूद तुम्हें ये नहीं कहते कि छोड़ दो, क्योंकि उनको पता है कि इसमें तुम्हारी खैर है। हरीस अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ रहीम, तुम्हारे हक में आ भलाई के बहुत हरीस है, जबर का नहीं। किसी क्रिश्चियन ने मुसलमानों को इस्लाम से मुतनफर करने के लिए कहा, हमारा नबी हमसे तुम्हारे नबी की निस्बत ज्यादा प्यार करता है। कैसे? कि उसने अपना अकलौता बेटा हमारे गुनाहों के लिए जिबा कर दिया, नौजुबिल्ला, हजरत ईसा की तरफ इशारा। और तुम्हारा नबी तुम्हारे बेटों को ले जाकर मैदान जंग में कटवाता है। हालांकि आप देखिए कि अल्लाह के नबी को तकलीफ होती थी। कई वाकयात हैं कि अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ जाते थे अपने सहाबा की हालत देखकर, कैफियत देखकर। इसके बावजूद कभी ये नहीं कहा कि छोड़ दो। इस पर कल बात करेंगे कि असल हिर्स क्या है। ये आयत आपको सिखाएगी कि आपका मामला आपके बच्चों के साथ कैसा हो, मोहब्बत के नाम पे क्या करें उनको। हाय नहीं, मेरे बच्चे सोते ही रहो, फजर छोड़ दो, क्योंकि तुमने बहुत लॉन्ग डे अहेड ऑफ यू, तुम्हारे आगे एक बड़ा लंबा दिन है, अभी और ही सो जाओ, बस सनराइज से 5 मिनट पहले उठ के पढ़ लेना, पढ़ सकते हैं ना। ये नहीं कहना। असल हिर्स क्या है कि ये आग से बच जाए। आखिरी आयत 129, फाइन तवल्लो, फिर भी अगर ये लोग रूगरदानी करें, किससे? सब चीजों से, दीन से, नबी से, जिहाद से, तबूक से, कुरान सुनने से, सीखने से, तो आप दिल मैला ना करें। आप कह चुके, आपकी हिर्स इनको बात पता लग गई है। आप बस एक काम कहिए कि फकुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा, मेरे लिए अल्लाह काफी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम, इसी पर मैंने तवक्कुल किया और वो बहुत बड़े अर्श का मालिक है। बंदे मोमिन का सहारा अल्लाह होता है, उसको अल्लाह काफी होता है। वो दूसरों की आस पे कभी कोई काम शुरू नहीं करता और ना छोड़ता है। साथियों से उम्मीद तो मिलती है, तसल्ली तो होती है, लेकिन काम तभी होगा जब अल्लाह पे तवक्कुल करेंगे। कल परसों किस कल शायद किसी का फोन आया, रीडिंग यहां से मेरा ख्याल है कि कुछ आधा पौना घंटा दूर है, वहां काफी अरसे से एक सिस्टर है, वो कोशिश कर रही थी कि दर्स हो, लेकिन वही जो आपको बताइए प्रॉब्लम्स होते हैं। तो कल बड़ी खुशी से उनका फोन आया कि उन्होंने किसी खास बात को सुन के समझ के तो उन्होंने हाँ कर दिया, तो नेक्स्ट संडे 3 to 5 का वो टाइम दे रहे हैं ना। तो इतनी एक्साइटेड थी कि बस मैं उनको ओके कह रही हूँ ना, तो मैंने कहा सबर, पहले ये बताओ कि हमने जाना कैसे है, सेम टाइम पे मर्दों की भी क्लास है, दिस एंड दैट। किस्सा मुख्य मैंने उनको होल्ड पे रखा। मैंने कहा अगर हमें कोई राइड का इंतजाम मिल गया, जाहिर है कि अब दर्स देने के लिए जा रहे हैं तो हम कुछ रियलिस्टिक बेस पे जाएंगे ना, बस से ट्रेनें वैगने कुछ भी होती हैं हर जगह, और उस पर भी जाना पड़े तो इंशाल्लाह जाएंगे, लेकिन कम अज कम साथ तो कोई चाहिए होता है ना। तो बस दफा आप देखिए कि जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं कि ऐसी नेकी सामने आ जाती है कि जिसको हमने सोचा भी नहीं होता, कर लेते हैं अल्लाह की आस पे, और अल्लाह ना चाहे तो नियत कर भी ले कोई करने की, फिर भी मौका नहीं आता। तो हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि सूरत अल तौबा हमारे तवक्कुल और अल्लाह पर यकीन में इजाफा कर दे। कुछ चीजें इंशाल्लाह इस पे कल देखेंगे। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत करे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। हमारी एक सिस्टर ने किसी बीमार के लिए दुआ के लिए कहा है, तो अल्लाह ताला जो भी है, वो भाई कामरान शायद उनका नाम बताया आपने, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, आफियत दे, और हम सब के भाई बहनों, बच्चों, शौहरों, घर वालों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। हम सबको भी दीन के लिए अल्लाह ताला सेहत और आफियत अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं तुम नमाज पढ़ूंगी इधर, अभी हम लोग जमात करेंगे, जो लोग निकल जाएंगे ठीक है, लेकिन जो रुक सकते हैं रुकते हैं। इरम आप तिलावत चला दो। अस्सलाम, आप लोग जा सकते हैं जिनको जाना चाहे तो।
वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू डियर उस्ताजा जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह तौबा भी हमारी मुकम्मल हुई और इतने लेसन हमने सीखे हैं इसमें से, खास तौर पे तो वही मुनाफिकों का वाकया काब صحابہ کعب بن مالک کا واقعہ، اور دیکھیں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں ہیں، اور اسی وقت وہی کہ جیسے ابھی ویکینڈ پہ سنا ہے کہ سسٹرز نے موقع کو اویل کیا اور حلقے شروع ہوئے ہیں، اس پہ بھی مبارک ہو، سب لندن سرکلز ابھی شروع ہوئے ہیں، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ درد ہمارے اندر ابھی شروع ہوا ہے کہ نہیں، ہمارے اندر بھی یہ درد ہونا چاہیے کہ ہم نے بھی اب کچھ کرنا ہے، اور رمضان آ رہا ہے، ہماری تیاری اب سے شروع ہونی چاہیے. اور جیسے ابھی استاذہ جی نے ہمیں وہ چیک لسٹ بھی دی ہے کہ اگر کعب بن مالک کا کعب بن مالک میں ہوتی تو میں اس کے قدموں میں ہوتی، اس کے شوز میں ہوتی، تو میرا کیا رویہ ہونا تھا، کیا میرا ہونا تھا کہ سبھی میرے ساتھ بات نہیں کر رہے، بائیکاٹ ہو گیا ہے، صحابہ نہیں بات کر رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ناراض. تو کیا دیکھا کہ جب کوئی موقع آئے تو ہم اس کو نگلیکٹ کر دیں تو کیا کھلتا ہے ہمارے لیے، کون سے دروازے کھلتے ہیں؟ استاذہ جی نے ہمیں بتایا کہ اگر ہمارے پاس کوئی اپرچونٹی آئے تو ہم اس کو اویل نہ کریں تو کیا ہوتا ہے، کون سے دروازے کھلتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے لاسٹ اپرچونٹی فور نیکی، وہ ہلاکت ڈسٹرکشن اپنی، ہمارا ہی نقصان ہوگا، اس میں ہمارا ہی نقصان ہوگا. تو ہم نے ایسے موقعوں کو گوانا نہیں ہے. مومن توبہ کرتا ہے جب وہ اپرچونٹی کو لوز کرتا ہے، لیکن منافق کے لیے کیا ہوتا ہے، یہ جب اس کو اپرچونٹی آتی ہے تو منافق کیا کہتا ہے، ہیپینس. بالکل، لیکن ہیپینس کے علاوہ اس کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اخیلے حصے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں کیا تھا، کیا تھا، کیا دیکھا ہم نے ان کے کام میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلائنڈلی کوئی کام کیا؟ ڈسپلن تھا، گڈ، بلائنڈلی نہیں کیا، محبت تھی، ایگزیکٹلی، آرگنائزیشن، اسٹریٹجی، بالکل، بہت آرگنائز طریقے سے، اور ڈسپلن، لائلٹی کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ ہم نے یہ چیز کرنی ہے انشاءاللہ. چلیں آج کا لیسن ہمارا اوور ہوا، تھوڑا سا ویل پلانڈ، بالکل یہ باتیں ہم نے اپنے گھر میں، اپنے پریکٹیکل لائف میں بھی لانی ہے، اور یہی بیوٹیفل لیسنز ہیں ہمارے لیے جو ہم اپنی ہدایت کے لیے لیتے ہیں ان کلاسز سے. انشاءاللہ اب کلاس کی اینڈنگ کریں گے، صبح ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، دعاؤں میں رکھنا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ. ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے شیئر کرنا ہے سب کو چیزوں کو، سو تھوڑے چھوٹے چھوٹے سینٹنسز، جیسے آج بینک ہالیڈے ہے، ہماری فیملیز ہمارے ساتھ ہیں، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور استقامت دی، ہم نے کلاس بھی کی، لیکن ہم نے ان کے ساتھ یہ شیئر کرنی ہیں باتیں، ٹھیک ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا